हवेली का मुख्य दरवाज़ा उस शाम सचमुच कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था, जैसे वो सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं, किसी आने वाली उपस्थिति का वज़न उठाए खड़ा हो। सूरज ढलान पर था और आकाश में फैली सुनहरी आभा हवेली की ऊंची दीवारों को एक गहरे गंभीर रंग में रंग रही थी। बरामदे के पत्थरों पर वो रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे समय खुद ठहर कर देख रहा हो कौन आ रहा है। बाहर आकर गाड़ी रुकी, इंजन की हल्की गूंज थमी और एक क्षण की चुप्पी छा गई। फिर दरवाज़ा खुला। सबसे पहले एक चप्पल जमीन से टकराई, ठक, फिर दूसरी, ठक। आवाज़ साधारण नहीं थी, उसमें एक सख्ती थी, एक आदत थी, जैसे हर कदम वर्षों से एक ही लय में पड़ता आया हो। गाड़ी से उतरती आकृति धीरे धीरे पूरी दिखाई दी। केसरी रंग की साड़ी, गाढ़ा, स्थिर, आंखों को बांध लेने वाला। साड़ी का कपड़ा रेशमी नहीं, सूती था, पर इतना साफ और कसा हुआ कि हर प्लीट सीधी रेखा जैसी दिखती। पल्लू सिर के ऊपर से उतरकर कंधे पर सलीके से जमा था, जैसे किसी नियम ने उसे वहीं रोका हो। माथे पर गोल गहरी लाल टिका, न बड़ी न छोटी, बस बिल्कुल केंद्र में। गले में तुलसी की माला और दाहिने हाथ की उंगलियों में एक चपा माला, जिसके दाने धीरे धीरे सरक रहे थे, बिना रुके, बिना दिखावे के, जैसे सांस के साथ चलती आदत। उनकी कलाई में पुरानी पीतल की कग्गन, जिसकी चमक नई नहीं पर सम्मानित थी। चेहरे की झुर्रियां उम्र नहीं, अनुशासन की रेखाएं लगती थीं, और आंखें सीधी पैनी ठहरी हुईं, जैसे सामने जो भी आए उसके बाहर नहीं भीतर को पढ़ लें। गाड़ी के पीछे से एक नौकर उतरा, उसके हाथ में एक बड़ी पुरानी लकड़ी की पेटी थी, लोहे के किनारों वाली। पेटी इतनी भारी थी कि उठाते समय उसके कंधे तन गए। उसने उसे दोनों हाथों से संभाल रखा था, जैसे अंदर कुछ साधारण नहीं हो। पेटी पर हल्की हल्की खरोंचे थी, पुराने सफरों की निशानी। कोई नहीं जानता था उसमें क्या है, कपड़े, किताबें, पूजा का सामान या कुछ और। बस उसका वजन और रहस्य साथ साथ चल रहे थे। सुषमा देवी ने गाड़ी से उतरते ही एक क्षण गर्दन उठाई और हवेली को देखा। वो देखना सिर्फ देखना नहीं था, जांच थी। दरवाजे की चौखट, खिड़कियों के शीशे, दीवारों की सफेदी, जैसे हवेली कोई इमारत नहीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका हो। अंदर बरामदे में सब पहले से खड़े थे। रत्ना देवी सबसे आगे, चेहरे पर स्वागत की मुस्कान, पर उंगलियां पल्लू के किनारे को बार बार मसलती हुई। शकुंतला थोड़ा पीछे, आंखों में हल्की घबराहट, होंठ सधे हुए। शामली एक तरफ, शांत, संयमित, मदर सतर्क। मधु, रामू और बाकी नौकर सीध में, हाथ जुड़े, नजरें झुकी हुई। आर्यन, विशाल और रम्या औपचारिक, असहज, जैसे समझ नहीं पा रहे कि मुस्कुराएं या स्थिर रहें। सुषमा देवी की नज़र सब पर एक एक करके गई, पहले रत्ना, फिर शकुंतला, फिर बच्चों पर, फिर नौकरों पर, फिर शामली पर, लेकिन उसको कुछ खास तरह से देखती हुई, जैसे पहले कभी मिले हों, लेकिन शामली की नज़रें सामान्य थीं। और अंत में उस नौकर पर जो पेटी पकड़े खड़ा था, जिसके हाथ अब भी वजन से कांप रहे थे। हर चेहरे पर बस एक पल, पर वो पल जैसे किसी तराजू की सुई हो, जो तुरंत बता दे कि क्या हल्का है क्या भारी। सब कैसे हैं, उन्होंने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा। सबके होंठ लगभग एक साथ हिले। अच्छे हैं दीदी, प्रणाम, नमस्ते। रत्ना देवी एक कदम आगे बढ़ी। आइए दीदी, सफर में थकान? पर वाक्य पूरा होने से पहले ही सुषमा देवी की आंखें दाई ओर मुड़ गईं। बरामदे के कोने में बना मंदिर साफ सजा हुआ, पर दीपक खाली, बाती सूखी। शाम की रोशनी चौखट तक आकर रुक गई थी, अंदर अंधेरा ठहरा हुआ। उनकी भौहें सिकुड़ी, जपा माला के दाने एक पल को रुके, चेहरा कठोर हुआ। राम राम राम, ये क्या चल रहा है यहाँ रत्ना? हवा भारी हो गई। तू तो कहती थी हवेली में पूजा पाठ अच्छे से होता है, बहू बहुत संस्कारी है, लेकिन यहाँ मंदिर में संध्या की पूजा अभी तक नहीं हुई। उन्होंने घड़ी देखी। जरा वक्त तो देख, मधु के हाथ कस गए। रामू ने गर्दन झुका ली। रम्या की मुस्कान फीकी पड़ी। आर्यन ने हल्की खांसी रोकी। विशाल ने पैर बदला। शामली की पलकी एक बार छपकी, फिर चेहरा फिर से स्थिर। रत्ना देवी ने तुरंत कहा, दीदी अंदर तो आइए, पहले थकान उतार लीजिए। नहीं रत्ना, स्वर सपाट था, आराम बाद में, पहले भगवान का स्थान देखना जरूरी है। उन्होंने वो कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। जपामाला फिर चलने लगी, टिक टिक टिक। घर की सांस शाम के दिए से चलती है, और यहाँ नजर सब पर घूमी, सब भगवान के चोर हो गए हैं क्या? शब्द ऊंचे नहीं थे, पर बरामदे की दीवारों से टकरा कर लौटे। मधु घबरा कर पलटी, मैं अभी, पर उनका हाथ हल्का उठा। अब क्या अभी, समय निकल गया, पूजा समय से होती है, बाद में नहीं। बरामदे में खड़े सब लोग जैसे अपनी अपनी जगह छोटे पड़ गए। हवेली जो विशाल लगती थी, उस पल अनुशासन की एक रेखा में सिमट गई। रत्ना देवी ने आंखें बंद की, बस एक क्षण, फिर खोली। गलती हो गई दीदी, आगे से नहीं, अब से, सुषमा देवी ने सीधा कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ, पूजा पाठ, समय, नियम सब मेरे हाथ में रहेगा, ढील बहुत हो चुकी। उनकी आवाज में क्रोध नहीं था, बस निर्णय था। शाम की हवा भीतर आई, मंदिर की सूखी बाती हल्की सी हिली, पर जली नहीं। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। तभी पीछे खड़ा नौकर पेटी का वजन संभालते संभालते थोड़ा डगमगाया। लोहे की किनारी पत्थर से टकराई, टन। आवाज गूंजी। सुषमा देवी ने पलटकर बेटी को देखा। सावधान, उन्होंने बस इतना कहा। बेटी को बरामदे के कोने में रखा गया। लकड़ी ने फर्श को छुआ, भारी ठोस ध्वनि के साथ। सबकी नजर अनजाने में उस पर गई। उसमें क्या है किसी को पता नहीं, पर उसका रहस्य भी उसी क्षण हवेली में प्रवेश कर चुका था। सुषमा देवी ने एक बार फिर हवेली के भीतर देखा, दीवारें, छत, कलियारा, फिर बोली, चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत काम है यहाँ। उनके कदम आगे बढ़े, धीमे, नपे हुए। चपामाला के दाने फिर चलने लगे। पल्लू हवा में हल्का सा हिला, पर बरामदे में खड़े लोगों के मन वहीं अटके रहे, उस पूछी बाती पर और उस भारी पेटी पर, जिसके साथ जैसे सिर्फ सामान नहीं, एक नया नियम, एक नई पकड़ और एक अनजाना रहस्य हवेली के भीतर आ चुका था। बरामदे में उस पल जैसे समय ने अपनी चाल इनी कर दी थी। हवा चल तो रही थी, पर उसकी सरसराहट भी दबे पांव लग रही थी, जैसे वो भी ऊंची आवाज करने से डर रही हो। दूर कहीं पेड़ों की पत्तियां हिली, पर वो ध्वनि भी हवेली की मोटी दीवारों से टकराकर मध्यम हो गई। मंदिर के सामने रखा पीतल का घंटा बिना छुए ही झूल रहा था, हल्का सा, पर उसकी न बजती आवाज ही सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। सबके चेहरों पर एक ही भाव उतर आया था, सतर्कता। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, फिर भी हर कोई भीतर ही भीतर सीधा खड़ा हो गया था, जैसे अचानक इस घर की हवा में नियमों की गंध खुल गई हो। और उस कोने में रखी भारी पेटी वो सिर्फ एक सामान नहीं लग रही थी, बल्कि किसी आने वाले परिवर्तन की मौन घोषणा बनकर पड़ी थी।